پھر آگے ہے باب، من اراد غزوة فور بغیرها ومن احب الخروج الى السفر یوم الخمیس. اس میں آپ کے لیے عمل کا ایک نقطہ ہے سفر کرنے کے ناطے. جو شخص کسی جنگ کا ارادہ کرے لیکن ظاہر کسی دوسری کو کرے، نیز جمعہ رات کے دن سفر کو جس نے بہتر خیال کیا. یعنی سفر کرنے میں اگر آپ کے چوائس ہونا تو جمعہ رات کا دن چوز کریں، یہ سنت ہے. عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال لقلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج اذا خرج فی سفر الا یوم الخمیس. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ جب کسی سفر کا ارادہ کرتے تو جمعرات کے علاوہ دوسرے دنوں میں کم تشریف لے جایا کرتے. تو آپ اور اپنے لیے نوٹ کریں، چوائس ہو تو سنت سمجھ کے اس کو قبول کریں، انشاءاللہ اس پہ بھی اجر ملے گا. اور حضرت کعب ہی سے ایک روایت ہے، ایک حدیث میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کا ارادہ فرماتے تو خاص مصلحت کے پیش نظر کسی دوسرے کام کا اظہار کرتے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو. یعنی پوری بات بتانی ہمیشہ ضروری نہیں ہوتی. بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں اچھا جی پوری کہانی سنائیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ پوری بات پہلے سے سنا دی جائے. پھر ہے التودیو، سفر کے وقت الوداع کہنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی باس فقال لنا ان لقیتم فلانا و فلانا لرجلین من قریش سماهما فحرقوهما بالنار قال ثم اتیناه نودیه حین ارادنا الخروج فقال انی کنت امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا بالنار و ان النار لا یعذب بها الا اللہ فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا. اس میں بھی عمل کی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے کسی لشکر کے ساتھ بھیجا اور ہم سے فرمایا جب تم قریش کے فلاں فلاں آدمیوں کو پاؤ تو انہیں آگ میں جلا دینا. آپ نے ان کا نام بھی لیا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سفر میں جانے لگے تو آپ کے پاس رخصت کے لیے آئے. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں شخص کو آگ میں جلا دینا، مگر آگ سے عذاب تو اللہ ہی کرتا ہے، لہٰذا تم اگر ان کو گرفتار کرو تو قتل کر دینا. اس میں پہلی بات تو کیا سمجھی، کسی کو الوداع کرتے وقت وہاں بات کرنا ملنا یہ سنت ہے، چاہے مسافر مقیم کو کہے یا پھر مقیم مسافر کو کہے. حدیث میں کیا ہے، مسافر مقیم کو کہہ رہا ہے. اور دوسری صورت کیا ہے، یعنی کسی کو سی آف کرنا، الوداع کرنا، یہ بھی سنت ہے. السمع والطاعت للامام، امام کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم قال السمع والطاعت حق ما لم یؤمر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعت. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا امام کی بات کو سننا اور ماننا ضروری ہے یہاں تک کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے، اگر کسی گناہ کو حکم دے تو اس کی بات سننا اور ماننا ضروری نہیں. تو یہ حدیث تقلید کے رد کے لیے زبردست دلیل ہے، یعنی کوئی بڑا ہونے کا یہ فائدہ نہ اٹھائے کہ خلافت سنت کام لوگوں سے کروانے لگے. یقاتل من وراء الامام ویتقی به، امام کے زیر سایہ حملہ اور دفاع کیا جاتا ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الاخرون السابقون ویقول من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن اسانی فقد اس اللہ ومن یطی الامیر فقد اطاعنی وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَسَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ. آپ دیکھ رہے کہ ان روایات میں امام کی فرما برداری کی بہت بات آ رہی ہے. اچھے امام چوز کریں پھر ان کی بات مانیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि हम लोग बाद में आने वाले हैं मगर मर्तबे में सबकत ले जाने वाले हैं। नीज़ आपने फरमाया, जिसने मेरी अतात की इसने अल्लाह का कहना माना, और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने अल्लाह की नाफरमानी की, और जिस शख्स ने हाकिम शरीयत की फरमा बरदारी की तो बिला शुबा इसने मेरी इताअत की, और जो शख्स हाकिम शरीयत की नाफरमानी करेगा तो बिला शुबा इसने मेरी नाफरमानी की। और इमाम तो ढाल की तरह है जिसके ज़ेरे साया जंग की जाती है और इसी के ज़रिए दिफा किया जाता है। अगर वो अल्लाह से डरने का हुक्म दे और अदल करे तो इसे सवाब मिलेगा, और अगर वो इसके खिलाफ करे तो इसके सबब गुनाहगार होगा। अब देखिए यहाँ कितना क्लियर पॉइंट दिया गया है, क्या कि जो लीडर्स होते हैं ना वो बेसिकली एक ढाल होते हैं बस, असल हुक्म फिर पीछे अल्लाह का ही है। उनका हर वो हुक्म, हर वो बात जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है उसको खुशी से लीजिए, लेकिन गलत बात नहीं माननी। और दूसरी बात है कि हाकिम शरीयत की ज़ात लोगों के लिए ढाल कैसे होती है, किसकी मौजूदगी में कोई किसी दूसरे पर जुल्म नहीं करता। दुश्मन भी खौफजदा रहता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये लोग इस वक्त किसी के अंडर है, जबकि अकेला बंदा हो तो उसको कोई पकड़े मारे ख़त्म कर दे कोई भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढाल है और इसकी हिफाजत करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी भी है। अलबैयतु फिल हर्बी अला अल्ला यफिरु, जंग में इस बात पर बैत लेना कि वो राह फरार इख्तियार ना करें। अन इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा काला, रजाना मिन अल आमिल मुकबिली फमजतमा मिन्ना इस्नानी अला शजरतिल्लती बायअना तहतहा कानत रहमतम मिन अल्लाही क़ीला लहु अला अय्यि शय्यिन बायअहुम अलल मौती क़ाला ला बायअहुम अलस सबरी। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि बैत रिजवान के बाद कब हुई थी, ये सन 6 हिजरी में, आइंदा साल जब दोबारा वहां आए तो हम में से दो आदमियों ने भी बिल इत्तफाक इस दरख्त को शनाख्त ना किया जिसके नीचे हमने बैत की थी, अल्लाह की इसमें कुछ मेहरबानी थी। पूछा गया कि रसूलुल्लाह ने सहाबा से किस बात पर बैत की थी, क्या मौत पर, तो उन्होंने कहा बल्कि साबित कदम रहने पर आपने इनसे बैत ली थी। अब देखिए यहाँ से इस्लाम का मिजाज समझे, इतनी बड़ी बैत हुई, इतनी बड़ी सुलह बाद में वो बनी, लेकिन उस दरख्त को नहीं बाकी रखा गया। क्यों? अंदेशा क्या था कि लोग उस दरख्त की ताज़ीम बजा लाते, उसको नफ़ा नुकसान देने का अकीदा कायम करते, यहाँ से फिर बातिल परस्ती शुरू होती है। तो हमारा दीन क्या कहता है, अमली कोशिशें करो। ये दरख्त है या कुर्सी है या मेज़ है ये कोई बात नहीं, आज कोई की इस कुर्सी पे बैठ के एक बड़ी अच्छी खबर सुनी थी तो ये कुर्सी बाबरकत हो गई है, इस टेलीफोन से मुझे बहुत अच्छी खबर आई थी तो फोन मेरे लिए बाबरकत है, और बड़ी बुरी खबर आई तो ये मनहूस हो गया। तो इस्लाम ऐसा मिजाज नहीं रखता। अन अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैदिन रदी अल्लाह अन्हु काल, लम्मा काना ज़मनुल हर्रति अताहु आतिन फ़काला लहु इन्नबना हंज़लता युबायउन नासा अलल मौत فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ واقع حرہ میں ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حنزلہ کا بیٹا لوگوں سے مر مٹنے پر بیعت لے رہا ہے، تو عبداللہ بن زید نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے بعد کسی سے اس شرط پر بیعت نہ کریں گے. اب اس میں دو تین باتیں ہیں، پہلی بات ہے کہ رسول اللہ کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانا ایمان کا جزو ہے، लेकिन इनके अलावा किसी दूसरे को ये एहसास नहीं कि उसके लिए अपनी जान का नजराना दिया जाए। दूसरी बात देखिए कि आज लोग कुछ बुजुर्गों के साथ बैत कर लेते हैं, तो बैत किसके साथ है, जिसके पास हाकमियत भी हो। अल्लाह और उसके रसूल के साथ बैत सबसे बड़ी बैत है, अल्लाह ताला हमें उसी का हक पहचानने वाला बना दे। अन सलमत इब्ने अक्वाइल रदी अल्लाह अन्हु काल, बायअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा अदलतु इला ذل شجرتي فلما خف الناس قال يا ابن الاقوي الا تبايع قال قلت قد بايعت يا رسول الله قال وايضا فبايعته الثانيه قيل له يا ابا مسلم الا اي شيء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت. حضرت سلمى بن اكوع رضي الله عنه نے کہا कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से बैत की और इसके बाद एक दरख्त के साय की तरफ हो गया। फिर जब हजूम हुआ तो आपने फरमाया, इब्ने अकवो, क्या तुम बैत नहीं करोगे? सलमा बिन अकवो कहते हैं, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं तो बैत कर चुका। फिर आपने फरमाया, तो फिर सही, लिहाजा मैंने आपसे दोबारा बैत की। फिर इनसे किसी ने दरियाफ्त किया कि तुमने इस दिन किस बात पर बैत की थी? उन्होंने कहा कि मौत पर, यानी खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा अल्लाह के दीन और नबी सल्लम के दिफा में। तो क्या पता चलता है कि हजरत सलमा जो थे बहुत जरी थे, बहादुर थे, जफाकश थे, और अल्लाह के नबी ने इनसे दूसरी बार बैत ली थी ताकि खुशी खुशी अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करें। और बैत लफ्ज़ किससे है भला? बा से, बैयुन, तजारत, यानी बैत करने वाला अल्लाह से फिर सौदा कर लेता है। अन मुजाशी रदी अल्लाह अन्हु काल, अतैतु नबिया अना व अखी फकुलतु बायना अलल हिजरती फकाला मददिल हिजरतु ली अहलिहा फकुलतु अलामा तुबायुना काला अलल इस्लामी वल जिहाद। हजरत मुजाशी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैं अपने रसूलुल्लाह को अपने भाई के पास लाया और मैंने अर्ज किया कि आप हमसे हिजरत पर बैत लें। आपने फरमाया कि हिजरत तो अहले हिजरत पर खत्म हो चुकी। मैंने अर्ज किया, फिर आप किस बात पर हमसे बैत लेंगे? आपने फरमाया कि इस्लाम और जिहाद पर। तो क्या पता चला कि बैत की बहुत सी किस्में, मसलन बैत इस्लाम, बैत हिजरत, बैत जिहाद वगैरह। आज के दौर में बैत तसव्वुफ का दीन इस्लाम में कोई वजूद नहीं है, यानी किसी बुजुर्ग या रूहानी पेशवा के साथ बैत करना, ये अल्लाह के नबी और सहाबा के दौर में हमें नहीं मिलता। बात वाज़े। अज़मुल इमाम यलन्नासि फीमा युतीकून, इमाम का लोगों को इस बात का पाबंद करना जिसकी वो ताकत रखते हो, यानी अच्छा इमाम और लीडर वो है जो लोगों पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डाले। अन इब्ने मसूदिन रदी अल्लाहु अन्हु काला, लकद अतानिल यौम रजुलन फसालनी अन अम्रिन मा दरैतु मा अरुद्दु अलैहि फकाला अरअयता रजुलन मुअद्दियन नशीतन यखरुजु मा अमराइना फिल मगाजी फयाजिमु अलैना फी अशिया ला नुख्सीहा फकुलतु लहु वल्लाहि मा अदरी मा कुलु लक इल्ला अना कुन्ना मा नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासा ला याजिम अलैना फी अम्रिन मर्रतन हत्ता नफ अलहु व इन्ना अहदकुम लन जजाला बिखैरी मा तक्कल्लाहा व इजा शक्क फी नफ्सिही शैयुन साला रजुलन फशफाहु मिन्हु वौ शका ला तजिदूहु वल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा मा अज़कुरु मा ग़बरा मिनद्दुनिया इल्ला कस्सगबी शुरिबा सफ़ुहु व बकिया कदरुहु। हज़रत इब्ने मसूद से ये रिवायत है, उन्होंने कहा कि आज मेरे पास एक शख्स ने आकर एक मसला पूछा, लेकिन मैं न समझा कि क्या जवाब दूं। इसने कहा, बताइए, एक तंदुरुस्त और तवाना आदमी जो हथियार से आरास्ता है, वो हमारे उमरा के साथ जिहाद में जाता है, मगर वो चंद बातों में ऐसे अहकाम देते हैं जिन पर हम अमल पैरा नहीं हो सकते। मैंने इनसे कहा, अल्लाह की कसम, मेरी समझ से बाहर है, किसके सिवा मैं तुझे क्या जवाब दूं? क्या हम रसूलुल्लाह के साथ जाते थे तो आप हमको एक मरतबा हुक्म फरमाते जिसको हम कर लिया करते थे, और बेशक तुम में से हर शख्स नेकी पर रहेगा जब तक अल्लाह से डरता है, लेकिन अगर इसके दिल में किसी बात का खटका हो तो वो किसी ऐसे शख्स से दरियाफ्त करे जो इसकी तशफ़ी कर दे, लेकिन अन करीब तुम्हें ऐसा आदमी ना मिल सकेगा। कसम इस ज़ात के जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, कि जितनी दुनिया बाकी है इसके बारे में ये कहता हूँ कि वह एक हौज की तरह है जिसका साफ पानी पी लिया गया और गदला पानी बाकी है, यानी दिन ब दिन फितने आएंगे। तो क्या पता चला कि हाकमे वक्त अगर शरीयत के मुताबिक कोई हुक्म दे तो इसको मानना लाजमी है, और सहाबा कराम इसी बात पे गामजन थे। आज आप देखिए ना कि जब डिफरेंट लोग सामने आते हैं तो फिर इसी से फिर लोगों में सवाल आते हैं कि अच्छा फिर हम इनकी गलत बातें कैसे माने। तो ये दुआ करनी चाहिए कि अच्छे हुक्मरान, और अच्छे हुक्मरान कब आते हैं? जब इंसान खुद अच्छे काम करता है। इंसान के जो अमाल हैं वही हुक्मरानों की सूरत में ढल जाते हैं। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लम युकातिल अव्वल नहारी अखरल किताला हत्ता तजूल शम्सु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह को लड़ाई शुरू ना करते तो इसे मौखर कर देते यहाँ तक कि सूरज ढल जाता, यानी या तो बस सुबह करते या जोहर के करीब, यानी सूरज के ढलने के, क्योंकि बहुत गर्म दिन होते हैं ना अरब में खासतौर पे। अन अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा रदियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बादी अय्यामिहिल्लती लकिया फीहा इंतजरा हत्ता मालति शम्सु सुम्मा काम फिन नासी काला अय्युहन्नासु ला ततमन्नौ लिका अदुवी वसालुल्लाह लाफियता फैजा लकीतुमूहुम फस्बिरू वालमु इन्नल जन्नत तख्त जिलालिस सुयूफ ثم قال اللهم منزل الكتاب إلى آخره وقد تقدم باقيش دعاء। पीछे आई थी ये दुआ भी। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जिहाद के मौके पर जिसमें दुश्मन से मुकाबला हुआ इंतजार किया यहाँ तक कि आफ्ताब ढल गया, इसके बाद आप लोगों में खड़े हो गए और फरमाए लोगों दुश्मन से मुकाबले की आरजू ना करो। क्या मतलब? जंग की दुआ ना करो कि हमें जंग करनी पड़े, बल्कि अल्लाह से आफियत मांगो। लेकिन अगर दुश्मन से मुकाबला हो तो सब्र करो और खूब जान लो कि तलवारों के साए तले जन्नत है। फिर आपने यूं दुआ किया, अल्लाह किताब के नाजिल करने वाले, और बाकी दुआ पीछे गुजरी है कहाँ, 1263 नंबर की हदीस में। लड़ाई के लिए जवाले आफ्ताब का इसलिए इंतजार करते कि यह वक्त बाद सबा चलने का है, जब भी लमून फतह और नुसरत का बायस होती है। वल्लाहु आलम। अल अजीरु, मजदूर लेकर जिहाद में जाना। अन याल इब्ने उमय्यत रदियल्लाहु अन्हु काल अस्ताजरतु अजीरन फकातल रजुलन फअद्दा अहदुहुमा यद लाखरी फंतजा यदहु मिन फीही वनजा सनीयतहु फअतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखदरहा फकाला अयदफाउ يده إليك فتقدمها كما يقدم الفحل। हज़रत जाला बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक आदमी को उजरत पर रखा, वो एक शख्स से लड़ पड़ा, इन दोनों में से एक ने दूसरे का हाथ काट खाया और जब दूसरे ने अपना हाथ इसके मुंह से खींचा तो इसके अगले दांत गिर गए और वह रसूलुल्लाह के पास आया, तो आपने इसके दांत का मुआवजा नहीं दिलाया बल्कि फरमाया कि वो अपना हाथ तेरे मुंह में ही रहने देता और तू उसको ऊंट की तरह इसको चबा डालता, यानी तूने उसके मुंह में हाथ डाला क्यों? तो उसने बचाने के लिए अगर हाथ छुड़ाया तो तेरे दांत टूट गए, तो तुझे इसका मुआवजा कैसे मिले? अबू दाऊद की रिवायत में कि रसूलुल्लाह ने एक दफा जंग पर जाने का ऐलान किया तो इस वक्त मैं बूढ़ा था और मेरा कोई खिदमतगार भी ना था, तो मैं एक शख्स को 3 दिनार के इवज अपने साथ जिहाद पर ले गया, यानी जैसे लोग अपने मुलाजिमों से काम लेते हैं तो उस दौर में लोग जंग में खुद जाने के साथ साथ अपने गुलामों को और अपने जो दूसरे होते हैं कह लीजिए कि जो खिदमतगार होते हैं उनको भी ले जाते थे। तो मतलब ये सारी बात कहने का कि जिस हद तक मुमकिन हो इंसान उस काम को करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।